कि तुम्हारा परपदार्थों में कुछ भी नहीं चलता। मिला प्रसंगी भाई, मिला क्या? हाँ। और तुम दूसरों को सुखी दुखी कर सकते हो या बांध छोड़ सकते हो, अथवा दूसरे तुम्हें सुखी दुखी कर सकते हैं या बांध छोड़ सकते हैं, यह मान्यता एकदम झूठी है और निरर्थक है, यानी उससे कुछ फलित होने वाला नहीं। हाँ, इतना फलित होगा कि कर्मों का जब तक ये झूठी मान्यता है तब तक नया नया कर्म बंध होता रहेगा। ये मान्यता छूटेगी तो कर्म बंध भी, वो मान्यता छूटी तो उसके साथ साथ अनंतानुबंध भी चला जाता है। जब मिथ्या तो छूटता है ना, तो अनंतानुबंध उसके साथ भी जल जाता है। फिर जो कषाय होते हैं, जो अप्रत्याशन प्रत्याशन संजल सब जो बात की थी, ये लिमिटेड है, नहीं के बराबर है। ये जो अनंतानुबंधी वाले जो राग द्वेष है वो बहुत अधिक है, यानी वो मिथ्यात्व में निमित्तभूत है। एक बार वो चले गए तो अभी जो राग द्वेष ऐसे दिखेंगे भी, परंतु वो अभी नहीं के बराबर, वो अनंत संसार के लिए कारण नहीं है। तो ये मान्यता एकदम झूठी है, निरर्थक है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का जीवन मरण और सुख दुख उसकी पर्यायगत योग्यता एवं उसके कर्मोदय अनुसार ही होते हैं। पर्यायगत योग्यता में उसने उन्होंने क्षणिक उपादान समझा है, और कर्मोदय में क्या लिया आप लोगों ने, निमित्त को लिया, अंतरंग निमित्त, क्योंकि नियम रूप है ना वो निमित्त। प्रत्येक जीव के सुख दुख में नियम रूप निमित्त कौन है, उसका कर्म। और बाह्य निमित्त अलग अलग होते, वो चेंज भी होते, इसलिए वो नियम रूप निमित्त को जो होता ही है उसको कहते हैं अंतरंग निमित्त। तो जीव के सुख दुख जन्म मरण में एक तो उसकी पर्यायगत अपनी योग्यता, यानी अभी मनुष्य पर्याय में है, वो मनुष्य है, अभी जीवित है, मर गया देव में चला गया, क्यों? उसकी पर्यायगत योग्यता मनुष्य रूप थी, तब तक वो मनुष्य पर्याय में था, तब उसमें निमित्त कौन था? तो मनुष्यायु नाम का जो कर्म उसका उदय चल रहा था, वो आयु कर्म का उदय उसमें निमित्त था। फिर वो आयु कर्म फिर गया, और फिर देवायु नाम का जो नाम कर्म था उसका उदय चल गया। नाम कर्म देवायु नाम का कर्म, आयु कर्म उसका उदय चालू हो गया। इसलिए इसने निमित्त में कर्मोदय को लिया। यह सुनिश्चित हो जाने पर के कर्तृत्व का अहंकार एवं पर से भय की भावना एकदम समाप्त हो जाती है। या तो यह जीव पर का कर्तृत्व अपने माथे लेकर उसका अहंकार करता है, देखो मैंने ये सारा कर दिया, या अपने को हीन दीन समझता है और पर मुझे कोई दुखी सुखी करेगा, या तो दीनता की भावना होती है और पर की ओर ताकते रहता है, या कोई मेरा बुरा न कर दे इसलिए पर के उसको हमेशा भय होता रहता। जब ये निमित्त उपादान की भी बात हमारी समझ में आएगी तो ये जो मान्यता में जो भय था वो तो चला जाएगा ना। कल जो बात देखी थी कि अवृत्ति समय दृष्टि को भी सब भय नहीं होते, फिर भी वो भय भी छोटा हुआ दिखता है, तो वहां कहते हैं ये अप्रत्याशन प्रत्याशन और संयोलन वाला भय है, ये अनंतानुबंधी भय नहीं है। वैसे ही जब निमित्त उपादान की बात समझ में आती है तो ये पक्का अपना भरोसा हो जाता है कि मेरा जो कुछ होने वाला है वो मेरे पर्यायगत योग्यता से होगा, अन्य किसी चीज मुझे दुख ही नहीं कर सकता। मेरे में ये जो जो कई घटनाएं होगी वो मेरी अपनी उपादान की योग्यता से और ये पुष्कर के पर्याय की योग्यता से ऐसी हो जाएगी, परंतु अन्य कोई मुझे मार दे, मुझे दुखी कर दे, ऐसी किसी में ताकत ही नहीं है, तो ये भय उतना चला गया ना। फिर भी अपने को बचाने का वगैरह जो सामने कोई संकट दिखेगा तो भी अपने भय होगा, बचाने का उपाय भी करेगा, परंतु वो अभी वो अनंतानुबंधी वाला वैसा तीव्र भय नहीं, वो विपरीत वाला जो मान्यता सहित वाला भय था वो भय नहीं है। अभी मान्यता उसकी सुलझ गई, मान्यता सुलझ गई फिर भी थोड़ा भय रहेगा, क्योंकि सभी कषाय तो अभी गए नहीं, पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए उतना भय उसको रहेगा। जब तक ये नौ कषाय कर्म भी है ना, भय नाम का कर्म भी है उसको, तो संयोलन में भी भय का सद्भाव रहता है, तो नवे गुणस्थान से फिर उसका अंत हो जाता है, आठवें गुणस्थान के अंत तक भय है, परंतु वो कैसा नहीं के बराबर। मंद 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 होता जाता है, ऊपर के गुण स्थानों में ये सारे ही कषाय मंद 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 होते जाते हैं, तो भय की भावना समाप्त हो जाती है। इस कारण लौकिक शांति भी प्राप्त होती है। कल प्रश्न पूछा था ना, लौकिक में भी कुछ फायदा है कि नहीं है, तो ये लौकिक में भी इतनी शांति तो आ जाती है। पर के कर्तृत्व से विकल्पों के शमन से, हम जब अपने को पर का मैं करता हूँ मानता है जी, तब बार बार उसके विकल्प भी वो करने धरने के लिए, तो ये विकल्प तो उसने उठे ही नहीं, अभी समन हुए ने शांत हुए, ये ने क्या, पहले तो बहुत दूसरे के करने धरने के विकल्प उठते थे, अब ये विकल्प ही नहीं उठते हैं। जैसे पहले मान्यता हो गई ना कि मैं कुछ का कर सकता ही नहीं हूँ, तो इसे कर्तृत्व भाव वाले विकल्प नहीं होते, फिर भी दूसरों को मदद करने के उपदेश देने के ऐसे तो परिणाम हो गए, परंतु मैं कर सकता हूँ ऐसे भावना पूर्वक नहीं हो। इसमें फर्क समझ में आता है, कर्तृत्व बुद्धि का अंत होगा परंतु अभी करने धरने का भाव थोड़ा रहेगा। जैसे कुमार ने चाक घुमाया, हाथ से घुमाया उसने, फिर हाथ निकाल लिया, फिर भी चाक घूमते हुए दिखता है, वैसे कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार छूट गया, कर्तृत्व बुद्धि मैं कर सकता हूँ यह मान्यता छूट जाने पर भी सम्यक दृष्टि को भी अवृत्ति समय दृष्टि को भी हम देखते कि दूसरे का कुछ कर रहा है, तो करने के भाव भी उसको उत्पन्न हो रहे, परंतु वो वाला मिथ्या वाला विपरीत मान्यता वाला अभी कर्तृत्व भाव नहीं रहा, क्योंकि अवृत्ति में तो कोई बाहर से तो कोई चेंज दिखता नहीं है। पहले भी जैसे वो बाल बच्चों का पालन पोषण करता था, व्यापार करता था, अब भी कर रहा है, तो अभी उसको हम कैसे सम्यक दृष्टि कहेंगे, तो आप नहीं कह सकते बाहर से, क्योंकि पहले जो कार्य करता था वो अभी भी करता है, पहले मैं करता हूँ मानकर करता था, अभी वो मान्यता छूट गई, तो मान्यता तो आपको बाहर से दिखेगी नहीं। हाँ, उसके साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस संबंधी, तो हमें पता चलेगा हाँ इसकी मान्यता सही है क्या खोटी है, विपरीत मान्यता होगी तो ख्याल में आ सकता है। तो पर के कर्तृत्व के विकल्पों के शमन से आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय भी सहज भाव से उपलब्ध होने लगता है। हम कहते हैं कि हमें समय टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि पर के काम से हमको फुर्सत नहीं मिलती। तो जब इसको पता चला कि अरे पर में मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तो वो विकल्प भी नहीं उठते और इसका टाइम भी उसको आध्यात्मिक कार्यों के लिए सहज ही उपलब्ध हो जाता है और लौकिक जीवन भी सुख शांति में हो जाता है। प्रश्न, इसमें तो यह कहा गया है अपने पूर्व कर्मोदय अनुसार संयोग प्राप्त होते हैं। इसमें विचारने की बात यह है कि कर्म भी तो निमित्त ही है, अतः निमित्तों से कुछ नहीं होता यह बात कहाँ रही। ऊपर कर्मोदय को लिया था ना, तो कर्म भी निमित्त ही है और निमित्त कोई जुटा नहीं सकता ना उसको, संयोग को मिटा सकता है, तो ये बात कहाँ रही कि कर्मों के कारण आता है, आपने कहा ये कहाँ बात रही। तो उसका उत्तर देते, अरे भाई संयोग तो अपनी योग्यता अनुसार ही होते हैं। अब ये नया घर बना, तो घर बना तो उसमें परमाणु की घर रूप होने की जो योग्यता है उसी से बना। अब वो घर मेरा है, मैंने पैसे दिए लिए, ये तो लौकिक व्यवहार जिसको कहते ना, जिसको हमने असद्भुत व्यवहार नहीं किया था, तो ये मेरा घर है, ऐसे उस जीव यानी बाहर में लौकिक में हम कहते ना ये मेरा है, ये उसके मालकी का है, तो ये उसको उसमें मालकीपन होना, उससे उसको सुख बुद्धि होना, सुख की बुद्धि हुई ना प्राप्त संयोगों में, उसको सुखरूप बुद्धि हुई, ये मेरा है ऐसे उसके कुछ संयोग बने, तो ये तो कर्मादि है। देखो ये क्या कहते, यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राणी के संयोग वियोगों में सुख दुख में उपादान तो वह स्वयं है, यानी जीव सुखी हुआ दुखी हुआ ये सुख दुख किसकी पर्याय है, जीव की। देखो ये संयोग वियोग में ये सारा घटाएंगे, सुखी कौन हुआ, जीव स्वयं, तो वो अपनी योग्यता से हुआ, तब कौन निमित्त था, कर्म निमित्त। अभी जो संयोग मिले परमाणु, अभी ये शरीर मिला या अन्य कोई चीजें मिली, तो ये तो परमाणु की अपनी योग्यता से मिली, तो इसमें क्या कहते हैं, उपादान तो वह स्वयं है और निमित्त उसी के कर्मोदय है, तुझे उसमें कुछ नहीं करना है। ये जो संयोग मिलते हैं, वियोग होता है, तो हम सोच सोच कर संयोग वियोग होता है, हमारा कोई लॉस हो जाता है, कोई अपना रिलेटिव मर जाता है, तो हम कुछ पुरुषार्थ से उसको कर सकते हैं, उसमें ला भी सकते हैं या मार भी सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये संयोग वियोग अपने अपने कारण होते हैं, उसमें जब हमको सुख दुख लगता है वो अपने कर्मोदय के कारण, सुखी भी हम अपने निमित्त से होते, सॉरी अपने उपादान से होते, सुखी दुखी अपने उपादान से होते, सब कर्म निमित्त। संयोग वियोग जो पर पदार्थ जो है पुद्गल है वो अपने उपादान से जुटते हैं बिखरते हैं, परंतु उसमें भी कर्मोदय निमित्त है ना। हाँ, इन्वॉल्व कौन होता है, जिसको तीव्र मोह है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, जिसको मोह मंद पड़ गया या जो सम्यक दृष्टि हो गया उसको भी थोड़े प्रमाण में, तो जितना भी तीन कषाय बाकी है ना, तो उतना उसमें सुख दुखी भी होगा वो। परंतु जैसे अनंतानुबंधी के साथ जितना तीव्र उसको सुख दुख होता था, वो पूरा ही पूरा उस रूप ही अपने को मानता था, वो तो अभी नहीं रहा बिल्कुल, उसको एक निराकुल की धारा सतत बरसती है। कैसे भी दुख का प्रसंग क्यों नहीं हो, हर्ष का प्रसंग कैसे भी क्यों ना, तो वो मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे उससे वो अनुभव की धारा उसके साथ साथ चलती है। भले तभी शुद्ध उपयोग में नहीं है, फिर भी जो होते हुए जो परिणाम अपने में राग द्वेष भी होता है उसको भी जानता चलता है, और अपने ज्ञायक में जो उसको स्वपने की बुद्धि है वो कभी भी नहीं छूटती, वो चलती ही रहती है। यहाँ तो उसके निमित्त उपादान दोनों बदला कर उसके कर्तृत्व की चिंता से तुझे मुक्त किया जा रहा है। देखो क्या कहते हैं, संयोग और वियोग सुख दुख में निमित्त बताकर अपने पर जो उसने माथे पर बोझ लिया था कर्तृत्व का, उससे छुड़ाना। तो इस ओर तो ध्यान देता नहीं, और उस कथन में से निमित्त का जोर निकालता है। देखो हमारे हर कथन में जोर किस पर आता है, हम जब कहते हैं अरे जब तक शुद्ध उपयोग नहीं होगा तब तक पुण्य तो करना चाहिए ना, यानी जोर कहाँ गया, जब जिसको हम चाहिए ना कहते ना, तो ये जो पुण्य के ऊपर जोर, तो विकल्प तो करना चाहिए ना, आते हैं, पुण्य भी होता है। हम यहाँ से पुणा चले गाड़ी में से, ट्रेन में से, तो रास्ते में कल्याण आये, थाना आया, कल्याण आया, और आगे लोनावला आया, सब गांव आ गए, तो हमें लोनावला जाना चाहिए ना, क्यों? अरे जब तो पूना की ओर जा रहा है तो रास्ते में लोनावला आएगा, पर हमारा ध्येय क्या लोनावला की तरफ जाने का है, ऐसा नहीं, वो तो आता है। तो ये इसका जोर कहाँ है, पुण्य करना चाहिए, पुण्य की ओर, यानी रात के ऊपर इसका जोर है, तो उसकी अभी मान्यता में कहीं ना कहीं वो भूल रहे थे। तो गुरु होता है, गुरु होता है, हाँ देखो इन लोनावला से होते हुए पुणे का रास्ता आएगा, बीच में आएगा लोनावला आएगा, पुणे का पुणे की ट्रेन में बैठे हो तो लोनावला लाने के लिए क्या करना, आपने क्या किया, आपने तो पुणे का टिकट निकाला, तो लोनावला फुकट में गए, आया ना उसी रास्ते पर। वैसे जहाँ इसका कार्य चल रहा है, समय दर्शन कर रहा है, तो रास्ते में गुरु भी सहज मिले, तो वो कहाँ देखता है, नहीं नहीं मुझे गुरु पहले ढूंढना है, तो ये मार्ग सहज होता है इतना, यानी उसकी जो चिंता है चिंता से छुड़ाया है। वो गुरु को भी खोजेगा, निर्णय भी करेगा वो सच्चा है कि नहीं है, समझो कोई झूठा उपदेश रहा है, वो उसको अंदर से संतोष नहीं हुआ, नहीं नहीं यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे तो और सच्चा उपदेश चाहिए, तो उसकी तो वैसे वो खोज भी करेगा, परंतु उसमें जो चिंता है बहुत ही व्यग्रता है, उसी ने पूरा वो अंदर से आकुलित होता है, उसकी जरूरी नहीं है ऐसा बताना चाहिए। हाँ, ये पुण्य जो है वो बाय प्रोडक्ट है, पुण्य के लिए कोई इस मार्ग में नहीं आता। हम आधा घंटा पौना घंटा या रोज डेढ़ घंटा भी जो ये निमित्त उपादान की चर्चा करे, आज 12वां दिवस है ना, तो ये कौन पुण्य के लोग से आए, हम के वस्तु स्वरूप समझने के लिए आए, और वस्तु स्वरूप भी अपने को समझने के लिए, क्योंकि मैं वस्तु हूँ और अन्य वस्तु से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मैं स्वयं एक वस्तु हूँ और मुझे अपना स्वरूप जानना है। तो आज तक जो मान्यता है थी झूठी, इतना ज्ञान होते ही हमारी जो झूठी मान्यता जो थी निमित्त उपादान संबंधी, वो एक एक गल गई ना, तो उसको झाड़ू लेकर निकालना पड़ा, उस संबंधी जो मान्यता थी वो निकल गई, सच्चा ज्ञान होता है तो ऐसे ऐसे झूठी मान्यता निकलती जाती है। इसीलिए तत्व ज्ञान से ही एक मोह जो मंद होने का जो कार्य है वो तत्व ज्ञान से ही होगा, बिल्कुल गलते जाएगा। एक 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 निर्णय, जैसे देव का निर्णय किया, गुरु का निर्णय किया, शास्त्र का निर्णय किया, अब ये निमित्त उपादान का निर्णय किया, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किया, एक 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 निर्णय करते जाओ ना तो अधिक अधिक अपने आत्म सम्मुख होते जाते हैं परिणाम, और फिर ऐसे स्टेज आते कि अनुभव हो जाता है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना, ये क्या किससे छुड़ा रहे, चिंता से छुड़ा रहे। निमित्त भी हो गए, आप जाओगे भी सुनोगे भी, ये सारी बातें होगी, उसका कोई निषेध नहीं करता, निमित्तों का निषेध नहीं किया जा रहा है, परंतु निमित्त के ऊपर जो अपना बल आता है उसकी महत्ता भाषित होती है, वो छुड़ाना है बस, और कुछ नहीं। वह कथन निमित्त पर जोर डालने के लिए नहीं किया गया है, अपितु इसमें तो कर्तृत्व के बोझ से दबे इस प्राणी के बोझ को कम करने का प्रयास किया गया है। ये मान्यता ही मान्यता में सारा बोझ अपने माथे पर लेकर बैठा है, इसने माथे पर बोझ लिया, इसके इसके कारण कार्य होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने माना कि हम परवस्तु का कार्य कर रहे हैं, तो क्या हमारे कारण परवस्तु का कार्य हो रहा है, क्या परवस्तु में अपने अपने कारण हो रहा है? परंतु हमने माना ना, माना तो उसका टेंशन लिया, और टेंशन लिया तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। हम देखते ना घर में कोई हमारे जैसे से बहुत किसी चीज का टेंशन लेते, तो डॉक्टर के पास ये क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, ये आप टेंशन ले रहे, क्या करना? अरे टेंशन छोड़ दो, तुम्हारे करने से क्या है, तुम क्यों इतना चिंता करते हो, कहते ना। तो यहाँ टेंशन लेते हैं पर का कर्तृत्व मैं कर सकता हूँ, तो उसका आपको फल भी भोगना पड़ेगा। ये जो मिथ्या मान्यता है उसके कारण बड़े से बड़ा स्थिति बंधन या अनुभाग बंधन सारा बंद हो जाएगा, कर्म के बंद भी हो गए और उसको फल, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्तृत्व का बोझ हटाया, बाकी जो हम कार्य कर रहे थे वो मिटेंगे नहीं, वो चलते ही रहेंगे। हमें क्या लगता है कि ये सुनेंगे तो चलो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा, घर में बैठेंगे, फिर घर भी छूट जाएगा, बाल बच्चे छूट जाएंगे, हमको वन में जाना पड़ेगा। ये तो जब बात आनी है तो हो जाएगी, परंतु ये अपने करने धनिये कोई मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये जो पड़ेगा वाली बात है ना, चाहिए वाली बात, वो नहीं रहेगी। किसी को समझा है ना, तेरा सब कुछ ऐसा ही चलेगा, धंधा और बढ़ेगा, हाँ तो कोई बात नहीं, तो हम इसमें आ जाए। फिर में ऐसा होता है ना, जीव अभी जो ना समझ जीव है, बच्चे को तो स्कूल में जाने की इच्छा होती है कि जबरदस्ती डालना पड़ता है। 3 साल के बच्चे को हम कितना रुलाते रुलाते वहाँ छोड़ कर आते, और 20-25 हजार के अभी तो लाखों में चलता है डोनेशन, इतना डोनेशन देंगे, और स्कूल में वो मम्मी के लिए रोता है तो भी वो जबरदस्ती बिठाएंगे और घर चले जाएंगे। वैसे शुरू में प्राथमिक अवस्था में जीवों को जबरदस्ती करनी पड़ती है, अरे बाबा आओ, ये आओ तो सही, इतना पुण्य बनेगा तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा लोग पुण्य का भी लोभ दिखा के जीवों को इस मार्ग पे लाया जाता है। उसके पीछे भी करुणा होती है आचार्यों की और ज्ञानियों की, किसी को जुगुप्सा दिखाते है, अरे शरीर का कैसा सम, देखो जरा विचार तो करो कैसा शरीर है, डिसेक्शन करके ओपन करके देखो कैसा, अंदर सारा मांस लोही ये सारा पीप भरा हुआ है, मलमूत्र भरा है, विष्ठा है, तो ऐसे ऐसे जुगुप्सा घृणा उत्पन्न करके भी देखो ये आत्मा का स्वरूप तो जानो, आत्मा कैसा सुंदर पदार्थ है, तो फिर उसको इस मार्ग पर लाते। इसे अन्य अन्य वहां तो कुछ कषाएं उत्पन्न करने का प्रयोजन नहीं है, जीवों के प्रति करुणा आती है, फिर ये इतना सुलभ सहज सुंदर मार्ग है, वो जीव इसमें क्यों नहीं आ रहे? पर प्रत्येक का अपना कल्याण है इसमें, उपदेश देने वाले को कुछ नहीं है, वो तो समझता है मेरे कारण कोई सुधरने वाला नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जीव इसको क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं अपना ही कल्याण करते। तो इसी भावना से वो अन्य अन्य ऐसे प्रलोभन दिखा के भी ऐसे रहते कि नहीं सुनो तो सही। हमें जो हमारे वो रसियाल वाले, एक निंचन जी रसियाल वाले, यहाँ स्वामी जी आए थे कांजी स्वामी, दादर भारतीय जिमखाना पर उनके प्रयोजन होते थे, उसके पहले इनको बताया, ऐसा समझो आप तो 18 दिन की आपको कैद हो गई, 18 दूनी 36 लेक्चर से आप सुनना, ऐसा समझो आपने कोई आज्ञा भंग किया और आपको जेल हो गई, पुलिस ने कोठरी में डाल दिया, कितने 18 दिन के लिए, ऐसा समझ कर आओ आप, और वो स्वयं कैसे आते थे, इतना प्लास्टर यहाँ तक एक पैर, और पूरे इतनी कड़ी धूप में मई महीने की वो घिसी घिसी के पूरा रास्ते में ऐसे बोले, ऐसे ऐसे जीव आते हैं, क्या बात है, क्या इतना सुनने में इतने लालच, और हजारों की भीड़ में। पहले तो वो क्या बोलते थे स्वामी जी के पीछे, इतने लोग पागल, स्वामी जी कुछ बताते हैं तो इतना तो ख्याल आता है कुछ अलौकिक बात कह रहे हैं, परंतु तो क्या पर्याय बोल रहे, क्या द्रव्य बोल रहे, क्या ये क्या है, उसमें कुछ नहीं समझता। फिर ऐसे लग रहा है इतने लोग सारे सुन रहे हैं, कुछ बात तो है। वो तो ये सारी जो बातें अभी हम आपको बता रहे, वो तो वो बताते थे, हमको कुछ नहीं समझता था, खाली बीच में आहा हा कहते और समझानों का इतना समझता। फिर उनके जो शिष्य थे वो उनको हमें समझाए, नहीं ये इन्होंने जो बात की ना, जो ऐसा कहना चाहते, तब ऐसा अरे ऐसी बात, इतनी अद्भुत बात, तो अपने कैसी समझ में नहीं। तो जब शुरू से जो सारा द्रव्य क्या है, छह द्रव्य क्या है, ये किसको क्या कहते हैं, गुण क्या, पर्याय का, ये सारा बार बार हमने शुरू से पढ़ा, तब स्वामी जी क्या करना चाहते थे उसकी फिर महत्ता है। अरे बाप रे बाप, ये ऐसा अलौकिक स्वरूप ये अपने आत्मा का बता रहे, डायरेक्ट सुनकर भी कुछ नहीं पता चलता था। तो ये जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो अधिक उनसे सियाने होते हो, ठीक है, ऐसा नहीं, वे भी उन्हीं से सीखे थे, परंतु हमारी वो जो बात कर रहे थे जो वो हमारी ख्याल में नहीं आते, हाँ उसमें योग्यता नहीं थी। तो ये उसको फिर समझा समझा कर ऐसा पढ़ाने वाले हमको मिले कोई पंडित, कि उनके द्वारा जो तैयार हुए थे, फिर उनके द्वारा जब ये बेस सारा समझ में आया, फिर द्रव्य गुण पर्याय क्या होता है, किसको क्या कहते, कैसे कहते, एक 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 बात समझ में आए, तो फिर वो क्या कहते थे ये सारी बात ख्याल में आने लगे। फिर उनके तो प्रवचन भी सुनते गए, उनके शास्त्र भी पढ़ते, पूरा सारा उनका जो जो प्रवचन, उनका जो पुस्तक में तो बहुत सारा है वो भी पढ़ा, और बहुत बार उनको भी सुना, तो ख्याल आया कि आत्मा का स्वरूप कह गया। तो ऐसे ज्ञानी जीव होते तो वो उनकी तो ऐसी भावना होती है ना कि सब ये बात सुने। कार्योत्पत्ति में निमित्त उपादान का कितना क्या और कैसा स्थान है, यह बात तो पहले बहुत स्पष्ट कर आए है। यहाँ भी बात आती है ना स्वामी जी की, तो ये निमित्त थे कि हमारे उपादान थे, निमित्त थे, और फिर उपादान अपनी योग्यता, फिर भी अहोभाव किसका आता है, ऐसे होता है जिसको मार्ग मिल जाता है उसको तो निमित्त के प्रति इतना अहोभाव आता है कि हाँ मेरा तो जीवन सुधर गया, मेरे तो भाव का अंत आ गया, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं वो बोलता कि अरे मैं तो मेरे उपादान से क्या, आपने क्या किया, ऐसे नहीं भावना होती उसकी, इतनी नम्रता इतना विनय तो सहज आ जाता है। ऐसा ही वो निमित्त उपादान का मेल होता है। कोई कहते हैं कि आप निमित्त को उड़ा देंगे तो सब लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, निमित्त कोई मानेगा नहीं, सब लोग कृतज्ञ हो जाएंगे, ऐसी कृतज्ञता आती नहीं। सच्ची कृतज्ञता तो उसी को आती है जिसने कार्य कर लिया, बाकी लौकिक महत्ता आती है और सब जय बोले तो हम भी जय बोले और व्यक्ति विशेष हो जाते है, वो ऐसा मूर्खता नहीं रहती थी, क्योंकि एक विशिष्ट व्यक्ति है, चलो उनको बजने से अपने घर में लक्ष्मी आएगी, चलो उनके पगले लगाऊंगे हमारी दीवार पर, तो ऐसा कुछ नहीं। जो वाणी है जो उपदेश किया है, जैसे आत्मा को कैसे जानना, ये जो वाणी आई उसको जिसने ग्रहण किया वे वो उनको गुरु कह सकते, और बाकी वो नहीं, वो अपने घर आते तो बहुत पैसे का ढगला हो जाता है, अपने को पुण्य होगा, ऐसे ही इस भावना से नहीं, यानी जो उन्होंने उपदेश किया उसके उल्टा न मानता और जय गुरुदेव बोलता है। तो गुरु का भी सच्चा स्वरूप उसी को समझेगा कि गुरु ने जो उपदेश दिया है उसका मर्म समझेगा, तो उसने वो गुरु की सच्ची पहचान की, मर्म समझा ही नहीं और बाहर से बस जय जय बोल दिया तो उससे क्या होगा, उनको तो आपके जय जयकार की कोई जरूरत नहीं रहती, वो तो अपना ही कार्य कर रहे और सहज भावना होती तो उपदेश भी दे रहे थे। तो ये निमित्त उपादान का भी जो समझ स्वरूप समझाया है, ऐसे गुरु स्वयं निमित्त रूप है हमारे लिए, और वो समझा रहे कि अरे उपादान तो स्वयं है, ऐसा नहीं मानते मेरी जय बोलो तो मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा, ये ऐसा सहज स्वरूप है निमित्त उपादान। कार्योत्पत्ति में यानी कार्य की उत्पत्ति में निमित्त उपादान का कितना क्या और कैसा स्थान है, यह बात तो पहले बहुत स्पष्ट कर आए है, यहाँ भी तदनुसार ही समझना। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि तू निश्चिंत रह, तुझे पर में कुछ नहीं करना है, उसके निमित्त उपादान तुझसे जुड़े हैं। देखो, हर एक के निमित्त उपादान अपने से जुड़े हैं। सामने वाले के जैसा कार्य उत्पत्ति होगी वैसे निमित्त उसको अपने आप मिलेंगे, और वे अपना अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, यानी खूब अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तुझे वहाँ उलझने की जरूरत नहीं है, यानी उसके विकल्पों में चिंतित होने की अपने को जरूरत नहीं है। अरे भाई, निमित्त और उपादान, वहाँ उपादान हुआ है, उपादान करना, निमित्त और उपादान का सही स्वरूप समझने में लौकिक और पारलौकिक लाभ ही लाभ है, यानी बहुत लाभ है। अतः उनके स्वरूप को समझने में उपयोग को लगा, तुझे निश्चित ही लौकिक और पारलौकिक सुख शांति की प्राप्ति होगी। अधिक संकल्प विकल्पों में उलझने में कोई लाभ नहीं है, यानी उसके पीछे और प्रश्न, विरोध के लिए प्रश्न निकालना निकालना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसे ऐसे, इसमें उलझने की कोई लाभ। जैसे सर्वज्ञ भगवान ने उपदेश दिया है वैसे तू मान, अभी मान तो अभी कल्याण होगा, अभी नहीं मानना है तो ये जाहिर है कि तेरा अभी बहुत लंबा काल संसार में घूमने का बाकी है, थोड़ा घूम ले, फिर बाद में जब तेरा सुधरने का अवसर आएगा तो इसी को मानने पर सुधरेगा। निमित्त उपादान के स्वरूप को स्पष्ट करने एवं उनके संबंध में उठने वाली शंकाओं आशंकाओं के निराकरण में जो भी संभव था प्रयास किया गया। अब और अधिक विस्तार से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अतः इस पावन भावना से विराम लेता हूँ कि सभी आत्मार्थी जन निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझकर लौकिक और पारलौकिक सुख शांति प्राप्त करें। नीचे लिखा है वो पढ़ेंगे, सत्य की खोज नाम की इनकी कथानक है, ये दीर्घ कथानक जिसको बोलते हैं, उसमें से ये पोर्शन उद्धृत किया है, उसमें है ना। जब तक पर पदार्थों में फेरफार करने की बुद्धि पूर्वक परोन्मुखी नहीं, क्या आपके पुस्तक में पहले आ चुका है मेरे ख्याल से, पुराने पुस्तक में पहले ही था वो। देखो, जब तक पर पदार्थों में फेरफार करने की बुद्धि पूर्वक परोन्मुखी प्रवृत्तियां रहेगी तब तक सत्य को प्राप्त करना तो बहुत दूर, उसके निकट पहुंचना भी संभव नहीं है। सत्य को प्राप्त करना यानी सत्य स्वरूप सत स्वरूप ऐसे आत्मा को प्राप्त करना, समय दर्शन का शुद्धात्म तत्व रूपी सत्य के साथ। ये देखो, सत्य किसको कहा, शुद्धात्म तत्व, अपने शुद्धात्म तत्व को पहचानना, वही स्वयं सत्य है। शुद्धात्म तत्व रूपी सत्य के साथ यह भी एक सत्य है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, उसे अपने परिणमन में पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अज्ञानी आत्मा व्यर्थ ही पर के सहयोग की आकांक्षा से व्याकुल होता है। सत्य की प्राप्ति स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के द्वारा ही होती है, उसमें पर की कुछ भी नहीं चलती, पर तो निमित्त मात्र है। वहीं इस कथानक के रूप में उन्होंने तत्व ज्ञान जैसे प्रथमान युग में कहानियों के द्वारा बताते हैं, वैसे सत्य की कोई नामक पुस्तक में उन्होंने ऐसे तत्वज्ञान बीच बीच में डाला है। अच्छा, अभी इसमें कुछ प्रश्न है कि ये उपादान का दोहा लेना है आगे वाला? हमने तो काफी चर्चा की है, प्रश्न उत्तर भी लिए, अभी समय है तो आगे वाला ये दोहा ले लें। हाँ पेज नंबर नई है कि पुरानी है? क्या आप पढ़ना तो मुझे क्या लगेगा? नवीन बाजू से आशय है, हाँ आशय यह है, वो पूरा पैराग्राफ। हाँ देखो, मैं पढ़ती हूँ। आशय यह मिला सबको, नए में 22 पेज है, दीपाली की शंका है उसकी, कोई प्रश्न देखेंगे। आशय यह है कि उपादान में मिला क्या, उपादान में कार्य रूप परिणमने की योग्यता होने पर वह स्वयं कार्य रूप परिणमता है, यानी उपादान उपादान में कार्य रूप होने की योग्यता ने क्षणिक उपादान, यानी पर्यायगत शक्ति, यानी तत्समय की योग्यता। तो उपादान में जब जब तत्समय की योग्यता रूप जो क्षणिक उपादान होता है, ऐसा होने पर वह स्वयं कार्य रूप परिणमता है और बाह्य सामग्री उसमें उसी समय निमित्त होती है। बाह्य सामग्री भी निमित्त कब कहेंगे कि वो कार्य होगा तब उसमें निमित्त कहेंगे, क्योंकि निमित्त पने को प्राप्त हुई बाह्य सामग्री, यानी जिसको हम बाह्य सामग्री को जिसको हम निमित्त कहते हैं, जो उस समय जो अनुकूल है, और उपादान भूत द्रव्य के कार्य में, उपादान भूत द्रव्य ऐसे दो बातें, निमित्त भूत बाह्य सामग्री और उपादान भूत द्रव्य स्वयं द्रव्य जिसमें कार्य हो रहा है, ये दोनों में कार्य में नियम से द्रव्य के कार्य में, उपादान भूत द्रव्य के कार्य में निमित्त बाह्य सामग्री और उपादान में द्रव्य का वो कार्य, द्रव्य की वह पर्याय, तो उनमें कैसा संबंध है, बाह्य व्याप्ति होती है। बाह्य व्याप्ति होती है उसका अर्थ होता है जब जब वहाँ कार्य होता है तब तक वहाँ सामने अनुकूल निमित्त होता, इसको कहते बाह्य व्याप्ति होती है। ये न्याय शास्त्र के शब्द है। आपका इसमें प्रश्न क्या है, बाह्य व्याप्ति को आपको समझना है। हाँ, इसी को काल प्रत्याशक्ति कहते, यानी एक ही काल में दो दो है सामने। हम जब दर्पण के सामने जाते हैं तब वहाँ प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब दर्पण की अवस्था है और हम स्वयं अपने में। तो जब जब वो दर्पण की अवस्था, अभी इसको हम कार्य समझेंगे, दर्पण की अवस्था हुई, दर्पण में वो प्रतिबिंब झलका, ये दर्पण का कार्य दर्पण में हुआ, वो दर्पण स्वयं त्रिकाली उपादान और उस समय इस पदार्थ का वहाँ झलकना था, तो वो हुआ उसका क्षणिक उपादान, तब सामने ये पदार्थ था, ये हुआ निमित्त। तो ये निमित्त और प्रतिबिंब एक साथ में है ना, तो ये हुई काल प्रत्याशक्ति। एक ही काल में दोनों का उपस्थित होना इसको कहते हैं काल प्रत्याशक्ति। हाँ, कारण और कार्य, यही प्रश्न था ना बेटा। शुका याने, अच्छा आप उस दिन नहीं थी। शुका याने फोकस तोता, बके याने बगुला, बगुला बगुला, यानी वो तोते को हम कुछ पढ़ाते हैं तो सीखता है ना बोलने को, और बगुले को या कोई चिड़िया को पढ़ाएंगे तो वो नहीं, जैसे तोता बोलता है वैसे कोई नहीं, अन्य पक्षी नहीं, ऐसे काका को वगैरह पढ़ते, परंतु यहाँ उसका उदाहरण दिया वही बगला। आप उस दिन थी नहीं इसलिए आपको समझ। हाँ हाँ, अनंतर पूर्व और उस समय की योग्यता। हाँ, व्यय अगर लेगी तो एक ही पर्याय में इसका व्यय और इसका उत्पाद हुआ, एक ही पर्याय में। अभी 12वें गुणस्थान का पहला समय है तो क्या हुआ उस समय, पहले 10वें के अंत में सूक्ष्म लोक था, हाँ उत्पाद था उसका, तो था तो उस समय तो वे नहीं हुआ, तो उसका वे कब हुआ, 12वें के पहले समय में वो नहीं था, नहीं था यही उसका वे है, ऐसा नहीं कि है फिर उसका वे हुआ, ऐसा नहीं। नहीं, दसवें के अंत समय में सूक्ष्म लोभ है, बारहवें के पहले समय में पूर्ण वितरकता है, और क्या नहीं है, सूक्ष्म लोभ अभी नहीं रहा। तो हम यहाँ कहते हैं पूर्ण वितरकता की उत्पत्ति और सूक्ष्म लोभ का जय एक ही समय में, ये एक ही समय में कार्य होता है। परिया एक ही है, वो कैसी है, नए की उत्पाद और पुराने का व्यय, दो कार्य नहीं, कार्य तो एक ही है। उत्पाद की तरफ देखो, कार्य क्या हुआ, उत्पन्न होने का कार्य हुआ, तो तब पूर्व पर्याय थी क्या, पूर्व पर्याय नहीं थी, तो उसी को हम पूर्व पर्याय का व्यय कहते हैं। अभी उजाला हुआ, अपेक्षा भी नहीं, वहाँ वो अपने वो है ही नहीं ना, तो उसको है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम गए हैं। दो कार्य नहीं है, वो एक ही कार्य है, एक ही कार्य, कार्य एक ही है, एक ही में प्रत्येक समय में पूर्व पर्याय का व्यय और उस समय का उत्पाद। एक्चुअली ये दो हमें समझना ही के लिए इतना घटाते हैं। तो देखो इसकी ये दो मणि है, ये माला की ये दो मोती है। अभी ये इस एक हमने एक हाथ में पकड़ा, इसको हाथ में पकड़ा, तो अभी ये पहला इसमें है ही नहीं है, पहले का इसमें अभाव है ना, पहला जो मोती चला गया उसका ये अभाव है इसमें, तो ये जो अभाव है उसी को व्यय कहते हैं। पहले मोती चला गया, जैसे पहले पर्याय भी चली गई, अभी है नहीं है, है नहीं उसी को व्यय कहते हैं। है फिर उसका व्यय किया, ऐसा नहीं है, पहली का न होना, पहली का अभाव रूप होना, यही उसका व्यय है। पहले तो भाव रूप था और अभी वो ये भाव रूप है और ये अभाव रूप है, तो ये है ही नहीं, उसको हम व्यय कहते हैं। है तो एक ही पर्याय, एक ही कार्य हुआ, और कुछ है प्रश्न, नहीं तो फिर हम वो दोहा ले लेंगे, थोड़ा टाइम है आज भी। देखो कबीरदास पंडित बनारस दास जी ने उपादान निमित्त दोहा लिखा है, और एक दोहा है भैया भगवती दास ने ये लिखा हुआ, वो दोनों है इसमें लिखे हुए। तो पहले वो बनारसी दास जी का देखेंगे। गुरु उपदेश निमित्त बिना उपादान बलहीन, जो नर दूजे पाँव बिना चलवे को आधीन। यह क्या कहते हैं कि निमित्त और उपादान आपस में बोल रहे हैं, तो निमित्त की तरफ से क्या कहते हैं कि गुरु के उपदेश के निमित्त बिना उपादान बलहीन है। आज तक गुरु का उपदेश नहीं मिला इसलिए समय दर्शन नहीं हुआ, तो उपादान ने कुछ नहीं किया, ऐसा प्रश्न है इसका। जो नर दूजे पाँव बिना चलवे को आधीन, तो जैसे नर यानी आदमी, तो दूजे पाँव बिना चलवे को आधीन, यानी पैर के बिना चल नहीं सकता, पैर के बिना नहीं चल सकता, ऐसे गुरु के निमित्त के बिना उपादान कुछ नहीं कर सकता। और भी पूछते थे, हो जाने था एक ही उपादान सो काज, सकई सहाई पवन बिना पानी मानी जहाज। यदि उपादान ही था सच्चा कारण, तो एक उपादान से ही कार्य होना था। कैसे, कि जैसे पानी में पवन यानी पवन, पवन के सहायता बिना जहाज नहीं चलता, वो एक ही स्थान में रहता, वैसे कहते कि उपादान तो था, निमित्त आया, देखो पवन निमित्त था तो जहाज आगे चला, बिना पवन के जहाज भी नहीं चलता है, ऐसे निमित्त वाला निमित्त के जोर में बोल रहा है। उस उसको कहते ज्ञान नयन क्रिया चरण दो शिव मगधार उपादान निश्चय जहाँ तहाँ निमित्त व्यवहार। उसको समझाते हैं कि जहाँ उपादान जो सच्चा कार्य है वहाँ जो निमित्त है उसको व्यवहार कहने में आता है, वो सच्चा कारण नहीं है, फिर भी सच्चा कारण तो उपादान ही है, फिर निमित्त को भी कारण कह देना ये उसका उपचार कारण है, वो सच्चा कारण नहीं है उपचार कारण, यानी कारण का आरोप आता है। जैसे ज्ञान और क्रिया, तो ज्ञान से होता है मार्ग के क्रिया से होता है, कोई कहते हैं ज्ञान से ही होता है, कोई कहते क्रिया से होता है, तो वहाँ कहते हैं ज्ञान नयन क्रिया चरण दो शिव मगधार, यानी ऐसा है ना कि कोई अंधा था और एक लूला था, उसके पैर नहीं है और एक को आँख नहीं है, तो बिना आँख का चल नहीं सक रहा है क्योंकि दिखता नहीं ना कहाँ जाना, और जिसको आँख है और पैर नहीं वो भी नहीं चल सकता है, मार्ग तो दिख रहा है परंतु पैर नहीं है तो चल नहीं सकता है, तो वैसे क्या करेंगे फिर, उसको जंगल के बाहर निकलना है, आग लगी है बहुत, एक है अंधा और दूसरा है लूला, अंधा देख नहीं सकता, लूला देख सकता है चल नहीं सकता, बाहर कैसे आए दोनों, दीपाली कुछ मारू सुझाव, हाँ तो अंधे के कंधे पर बैठा लूला, तो उसने हाथ में काठी ली, तो वो जो देखने वाला है वो ऊपर से उसको रास्ता बताता है, और जो नहीं, तो उसके साथ साथ ये क्रिया यानी वो सच्ची क्रिया ने आत्मा में स्थित था, फिर भी वहाँ निमित्त रूप से बाह्य क्रिया होती है जिसको व्यवहार से चारित्र कहने में आता है, उस जिसको व्यवहार से चारित्र कहते हैं, ऐसी जो मुनि धर्म रूप जो क्रिया है वो भी होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब भावलिंग होता है तो द्रव्यलिंग भी होता ही है, उसके बिना भावलिंग भी नहीं होगा, तो द्रव्यलिंग को भी हम चारित्र कहते, उसको क्रिया भी कहा, तो वो तो निमित्त रूप है, उसको सहचर है, वो है, उसकी उपस्थिति होती है, जब जब यहाँ ऐसा मोक्ष मार्ग है, जब जब इतनी स्थिरता है, तब बाह्य में भी ऐसी क्रिया होती है, तो उस क्रिया को भी मोक्ष मार्ग कह दिया, 28 मूल गुण को भी मुनि धर्म कह दिया, सच्चा मुनि धर्म तो अंतरंग में है, जब जब ऐसा सच्चा होता है तब तब निमित्त रूप से ऐसी बातें होती है, उपस्थिति होती है, अब ये 28 मूल गुण करने का भाव, देखकर चलने की क्रिया, ये सारी क्रिया भी हो रही है ना, कि अकेला भाव ही आ रहा है अहिंसा का, अहिंसा के भाव के साथ साथ देखकर सोचकर चलने की या खाने की, ऐसे ऐसे सोचकर खाने की वो क्रिया भी हो रही है, तो ऐसा वो साथ में ऐसे निमित्त रूप से ऐसी क्रिया ऐसे राग विद्यमान होते है, वो है इसलिए मोक्ष मार्ग हुआ, ऐसा नहीं तो राग से भी त्रासता होती है मानना पड़ेगा, मुनि धर्म जब है मोक्ष मार्ग पर अग्रेसर हो गया है तो बीच में ये मुनि धर्म भी आएगा, मुनि हुए बिना कोई अरिहंत नहीं होगा, डायरेक्ट गृहस्थ में से 5वें गुणस्थान में से 12वां गुणस्थान नहीं प्रकटेगा, बीच में ये सारे रास्ते आएंगे, मुनि धर्म होगा, तो मुनि धर्म होगा तो अंतरंग स्थिरता है, समय दर्शन ज्ञान है, तो वहाँ बाह्य में चारित्र भी जो है अंतरंग स्थिरता, तो बाह्य में भी ऐसे ऐसे वहाँ क्रिया भी ऐसी होगी, तो कहते ज्ञान और क्रिया, ज्ञान नयन, ज्ञान रूपी नयन आंखें, और क्रिया रूपी चरण यानी पैर, ये अंधा लूला जैसे था ना वैसे, दो शिव मगधार, ये दोनों मिलकर शिव मार्ग उसको बताया, उपादान मोक्ष मार्ग, शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, ये दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग है, परंतु इसमें सच्चा कौन है, देखो मुनि धर्म जो 28 मूल गुण है या बाह्य क्रिया है उसको भी मोक्ष मार्ग बता दिया, अंतरंग में जो है उसको भी मोक्ष मार्ग बताया गया, तो दोनों को बताया इसमें सच्चा कौन, तो कहते उपादान निश्चय जहाँ, जो निश्चय है ना यथार्थ मार्ग तो उपादान रूप है, जो अंतरंग में जो स्थिरता दर्शन ज्ञान चारित्र है वो है उपादान, और तहां निमित्त व्यवहार, तब जो उस चीज की उपस्थिति होती है उसको निमित्त कहते हैं, और वो व्यवहार है, व्यवहार यानी उपचार कथन है, उपचार से उसको भी बता दिया जाता है। जैसे उपनिमित्त को भी हमने कारण कह दिया, वैसे यहाँ इसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया, परंतु हमें अभिप्राय में ये बराबर जानना चाहिए इसमें सच्चा मोक्ष मार्ग कौन है और उपचार का कौन है। निमित्त रूप से वो उपचार व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है, प्रेजेंस है, जैसे निमित्त होता है वैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग भी होता है, परंतु सच्चा मोक्ष मार्ग तो उपादान रूप जो क्रिया चल रही है उसकी, समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मार्ग है उसका, वही निश्चय मार्ग है। उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर हो, जहाँ निज गुण द्रव्य का अपना गुण उपादान है और निमित्त कौन होता है, पर होता है। भेद ज्ञान परमाण विधि विरला बूझे गुण, ये जो भेद ज्ञान करने की जो विधि है, प्रमाण यानी जो सही विधि है, वो विरला बूझे, कोई कोई विरला ही उसको जानता है। उपादान बल जहाँ, देखिए शास्त्र में तो उपादान निमित्त की चर्चा आएगी, उसके उसको मोक्ष मार्ग भी बताया जाएगा, ये कारण है ऐसा भी कहेंगे, परंतु जो विरला जो है वो सियाना जो है तो उसमें वो भेद ज्ञान करेगा कि इसमें सच्चा क्या है, उपकार क्या है, इसमें सत्य कथन क्या है, उपकार कथन क्या है, इसमें स्व कौन है, पर कौन है, ये जो भेद ज्ञान है ये विरला ही जान सकता है। बुझे को ये नहीं जाने, समझना। उपादान बल जहां कहां निमित्त को, कहां नहीं निमित्त को दाव, यानी जो उपादान जो बल है उपादान से ही कार्य होता है और निमित्त का वहां कोई दाव नहीं है, यानी कोई वहां उसका चलता नहीं है, उपादान से ही कार्य होता है, उपादान के बल से ही कार्य होता है, निमित्त का वहां कुछ नहीं चलता, यानी निमित्त उसमें कुछ नहीं करता। कैसे उसको दृष्टांत दिया, एक चक्र सौ रथ चले रवि को यह स्वभाव, जैसे सूर्य का जो रथ है वो एक चक्र से चलता है, ऐसी अन्य मत में ऐसे कथन आता है, सूर्य का रथ देखा है कभी, उसमें सात घोड़े होते हैं और एक चक्र होता है, ये दो पहिए नहीं होते, जैसे घोड़ा गाड़ी में कितने पहिए होते, दो, दो चक्र है ना उसके पहिए, और अपने गाड़ी में मोटर गाड़ी में चार और उसके रथ में एक, वैसे उसका दृष्टांत दिया कि जैसे सूर्य के रथ में एक ही पहिया होता है, एक ही चाक होता है, व्हील, हाँ चक्र यानी व्हील, तो यह दृष्टांत देकर समझाया। वैसे कार्य एकमात्र उपादान से होता है, ये उपादान और निमित्त ऐसे दो चाक नहीं है, ऐसे दो चाक से रथ नहीं चलता, पर्याय का एक ही से चलता है, उपादान से ही चलता है, निमित्त से नहीं चलता, कार्य उपादान से होगा निमित्त से नहीं होगा। सदैव वस्तु असहाय जहाँ तहाँ निमित्त है कौन, वस्तु असहाय है उसको दूसरे के सहाय की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं असहाय, असहाय ने अनाथ ऐसा नहीं है, जिसको कोई सहाय नहीं ऐसा नहीं, जिसको किसी के सहायता की जरूरत नहीं है ऐसी वस्तु असहाय है, तो वस्तु असहाय सिद्ध होती है, वो असहाय ही है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, स्वतः सिद्ध है, स्वाधीन है, अनादि अनंत तो है ही, उसको रहने में यानी वो जो वस्तु है आत्मा, किसी ने उत्पन्न किया है दीपाली, तो वो है ना अनादि से है रहेगा आनंद काल तक, वैसे उसको किसी ने बनाया नहीं तो उसको परिणमन भी आने को भी करेगा, ये बात कहाँ से आई, जो द्रव्य स्वयं से है तो पर्याय भी स्वयं से होती है, उसको भी अन्य कोई करता नहीं, वैसे द्रव्य भी अनादि अनंत है, वैसे एक एक समय में भी पर्याय है तो उसका भी अन्य कोई करता नहीं है, वो उसकी उपादान की योग्यता से उत्पन्न होती है। कहाँ निमित्त है कौन, वहां निमित्त कौन है, कौन है ने कोई नहीं है, उसको बनाने वाला कोई नहीं, जो जहाज प्रवाह में किराए सहज बिना कौन, जैसे प्रवाह में जल के प्रवाह में जहाज स्वयं तिरता है बिना पवन के, पवन नहीं भी होगा तो भी वहाँ वो प्रवाह में चलता है। उपादान विधि, उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश, उपादान की विधि अभी जो मोक्ष का मार्ग है, सम्यक दर्शन है, आत्मा की अनुभूति है, उसमें कैसे वो निर्वचन है, वचनातीत है, उसका जो विधि है वो सारा अंतर में है। आत्मा को प्राप्त करना है तो वचन व्यापार सब छूट कर अंतर में जाओ, समा जाओ, जमा जाओ, जो कुछ है वो वचनातीत है, वो शब्दों में नहीं कहा जाता। शब्दों में कुछ कुछ हम कह सकते हैं, उसको क्या कहें, है निमित्त उपदेश। तब निमित्त जो गुरु का उपदेश है, आत्मज्ञानी का जो उपदेश है वो निमित्त है, परंतु वो निमित्त है इसलिए अनुभव नहीं होगा कि वो निमित्त का भी लक्ष्य छोड़कर, वचन उपदेश का भी लक्ष्य छोड़कर अंतर में जो कुछ होगा वो वचनातीत होगा। अंतरंग में जब जल्प जल्प यानी जो ऐसे हम मन में भी हमारे विचार रूप चलते ना, अक्षरात्मक भाषात्मक चलते, जैसे हम दूसरे के समझाते, जैसे स्वयं को भी समझाते रहते, आत्मा ऐसा है वैसा है वैसा है, यह ऐसा है वैसा है वैसा है, ये क्या है, वचन है ना, ये निर्वचन है। जिस जैसे हम सोचते विकल्पात्मक कि आत्मा अरूपी है, त्रिकाली है, ऐसा है, वो एक समय वाला नहीं है, इतना है वैसा है, ये क्या सारा तो वचन रूपी हुआ, भाषात्मक हुआ ना। तो भाषात्मक जब जब ये चल रहा है अंदर, तो समझना कि अभी आत्मा की अनुभूति नहीं है। तो ये कैसी है, ये सारी विधि और उसका सबसे ज्यादा जो ज्ञान है वो वचनातीत है, वचन के पार है, वचन भी छूट जाते हैं, अंदर कोई वचनात्मक ऐसा नहीं रहता और निर्विकल्प ऐसी अनुभूति हो जाती। तो इसलिए यहाँ क्या है कि उपादान की जो विधि है वो निर्वचन है, वचनातीत है, वचन के पार है, और वचन के वचन से तो उसको हिंट दी जाती है, इशारा किया जाता है। गुरु का जो उपदेश है जो वचनात्मक है, भाषात्मक है ना, तो उससे तो इशारा किया उपादान की तरफ, तो ये तो वचन से अगोचर ऐसा जो होगा। विकल्प ये रागात्मक विकल्प नहीं, वाणी वाणी में भाषा में चल रहे विकल्प, वो अनुभव नहीं है। हाँ, वो निर्विकल्प देते विचार में है, तब तक भी वो गुरु का उपदेश ही दोहरा रहा है। गुरु का उपदेश हो या शास्त्र की बातें हो या सर्वज्ञ का उपदेश हो, उसको उसी को दोहरा रहा है ना मन में, मन पर मन में उसी पर विचार हो रहा है, वो अभी निर्विकल्प ऐसा नहीं है। वो निमित्त ये सारा जो उपदेश है, ये सिद्धांत की अभ्यास हम करते हैं, वो सारा उपदेश में ही देना वहाँ, क्योंकि जो उपदेश सुना या पढ़ा है उसी को तो हम मन में दोहरा रहे, वहाँ तो उन्होंने बताया, फिर हम मन में उसको दोहरा रहे, ये दोहराना वो आत्मानुभूति नहीं है वो। हाँ, तो उसके पार जब हो जाए, चिंतन में भी अभी वो उपदेश पर ही हम चिंतन कर रहे, चिंतन के पार हो जाएंगे तब वो आत्मा की अनुभूति होगी। तो इसलिए इसको कहते हैं ये निर्वचन है, वचन रूप नहीं है, और जो वचन रूप जो सर उपदेश है वो निमित्त है, जो बहिर्जल पर है ना, फुट फुट आना बोलना, ये बहिर्जल पर है, जल पर वो वाणीत्मक जो है ना। वसे जो देशे देश में धरे सु तैसे भेष, यानी जिस देश में हम बसते हैं वैसा भेष धारण करते हैं ना। अभी इंडिया में रहते तो इंडियन जैसा, और अमेरिका में गए तो वैसा भेष धारण कर ले, वैसे जिस देश में जिस जैसे काल में रहते वैसे वैसा भेष धारण करते हैं। यानी हम निमित्त को, हाँ मुख्यता से उसको कारण कहा जाता है, वो तो लोग से बांधते हैं वोटों के। हाँ, तो वैसे ये बात आती ना सीमन में कि जे जे जहाँ जहाँ योग्य से क्या समझ होते, ये भी कहीं यहाँ लिखे थे, जिस देश में वैसी भाषा है वैसा उसका पेरा हो जाता है। तो अभी इसको पढ़ेंगे, निमित्त उपादान, उपादान निमित्त दोहा। पाद प्रणमी जिन देव के एक उक्ति उपजाए, उपादान अरु निमित्त को कहू संवाद बनाए। इन्हें जिनेन्द्र देव के चरणों में प्रणाम करके, पाद यानी पैर चरण, प्रणमी यानी नमस्कार करके, जिनेन्द्र भगवान के चरणों में प्रणाम करके एक अपूर्व कथन तैयार करता हूँ। उक्ति यानी कथन, वचन। उपादान और निमित्त का संवाद बनाकर उसे कहता हूँ। यानी इसको जैसे उपादान और निमित्त आपस में बोल रहे हैं, वो संवाद हो रहा है, जैसे वो अपने इसमें आता है ना वितरण विज्ञान में, जैसे दिनेश और दिनेश ऐसे समाज बोल रहे, वैसे अध्यापक या विद्यार्थी वैसे यहाँ संवाद बना रहे। उपजाने बनाकर, हाँ हाँ, ये भाषा भी अपनी ऑर्डिनरी हिंदी नहीं ना, पूर्व की वो भगवती दास जी ने लिखी है। अभी उसमें प्रश्न है, पूछत है को तहा उपादान किह नाम, कहो निमित्त कहिए कहा, कब कही है यह ठाम। यहाँ कोई पूछता है, को यानी कोई, को पूछता है यानी कोई पूछता है कि उपादान किसका नाम है। निमित्त उपादान कुछ मालूम है, मालूम नहीं है तो क्या पूछता है, अरे उपादान किसका नाम है और निमित्त किसे कहते हैं। निमित्त कहिए कहा, कहा यानी किसको, यानी निमित्त ये क्या बात है, कब कई है यह ठाम और उनका यह संबंध कब से है तो कहो। निमित्त उपादान की चर्चा तो उठाइए, तो पहले में पहले निमित्त क्या है, उपादान क्या है, क्या है और उनका आपस में क्या संबंध है, इसको बता दो। उपादान निज शक्ति है, जीव को मूल स्वभाव है, निमित्त पर योग ते बनियो अनादि बना। ये तो गाथा पहले आई थी पुस्तक में भी हमने देखी थी। उपादान अपनी निज की शक्ति है, वह जीव का मूल स्वभाव है और पर संयोग जो है वह निमित्त है और उनका संबंध कब से है, अनादिकाल से बना हुआ है। जैसे जीव का और कर्म का अनादि से निमित्त बना हुआ है और उनके वो कार्य भी हो रहे हैं। जीव का यानी जीव का, अब निमित्त कह रहा है, अब निमित्त के मुंह में ये संवाद आगे का कि निमित्त कहे मोह को सबे, जानत है जग लोय, तेरा नाव न जान ही उपादान को होय। अब निमित्त और उपादान आपस में बोल रहे, निमित्त उपादान की तरफ देख कर बोलता है, हे उपादान तुझे कोई जानता भी नहीं है, मेरे को सारा पूरा लोग जानता है। तो निमित्त कहता है कि जगत के सभी लोग मुझे जानते हैं और उपादान कौन है उसका नाम तक नहीं जानते। तो उपादान हो ये क्या होता है, ये क्या भला है, ऐसा कहते हैं। तो निमित्त हम तो मालूम है, अरे ये इसका निमित्त है उसका निमित्त है, इसलिए सबको लगता है कि हम निमित्त को जानते हैं और उपादान को कोई जानता ही नहीं। देखो अब उसके लिए उपादान उत्तर देता है, उपादान कहे रे निमित्त, तू कहा करे गुमान, मोको जाने जीववे जो है सम्यकवान। तो क्यों गुमान करता है, क्यों इतना अभिमान करता है, मुझे तो वही जीव जानते हैं जो सम्यक जीव है, यानी सम्यक जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, वही मुझको जानते हैं। उपादान कहता है कि निमित्त तू अभिमान किस लिए करता है, जो जीव सम्यक ज्ञानी है वे मुझे जानते हैं। फिर निमित्त कहता है, कहे जीव सब जगत के, जो निमित्त सोई होए, उपादान की बात को पूछे नाही को। जगत के सब जीव कहते हैं कि जैसा निमित्त होता है वैसा ही कार्य होता है, सारे जगत के ऐसा कहते ना। देखो गंधर आया तो महावीर की वाणी छूटी, निमित्त आया तो ऐसा हुआ, तो निमित्त से ही कार्य होता है ऐसा सारे जीव कहते हैं। उपादान की बात को तो कोई पूछता ही नहीं है, पूछे ना ही तो है ना, इन्हें उपादान का कोई पूछता नहीं, ये जगत में सारे निमित्त का ही बोलबाला है। फिर उपादान कहता है, उपादान बिना निमित्त तू कर न सके एक काज, कहा भयो जग नालक है, जानत है जिन्हें राज। उपादान कहता है कि अरे निमित्त, एक भी कार्य बिना उपादान के नहीं हो सकता, इसे जगत नहीं जानता तो क्या हुआ, कहो कहा भयो यानी क्या हुआ, जग ना लख यानी जग नहीं जानता तो क्या हुआ। जिनराज तो उसे जानते हैं, जो सर्वज्ञ है, जो एक एक सारी बातों को जानने वाले ऐसे है, वो तो इसे जानते हैं। तो निमित्त कहता है, देव जिनेश्वर गुरु यति अरुजिन आगम सार, यह निमित्त से जीव सब पावत है भव पार। निमित्त क्या कहते हैं कि जो जिनेश्वर देव है, निर्ग्रंथ गुरु है और वीतराग का आगम उत्कृष्ट है, इन निमित्तों द्वारा सभी जीव भव से पार होते हैं। उन्होंने जिनेन्द्र भगवान को लिया ना, जिनेन्द्र भगवान तो जानते हैं, तो वो निमित्त कहने लगा जिनेन्द्र भगवान भी वो कैसे हुए कि जो सच्चे देव गुरु और शास्त्र है, उनके निमित्त से ही यह जीव भव पार हो जाता है, उनके निमित्त से ही यह जीव मोक्ष पाता है। यानी वो भी निमित्त अपनी ही वहाँ बजा रहा है, देखो मेरे कारण ही हुआ, हाँ मेरे कारण उसको मोक्ष मिल गया कहता है। तो उपादान कहता है यह निमित्त यह जीव के मिलो अनंती बार, उपादान पलट्यो नहीं तो भटक्यो संसार। तो कहते ये सच्चे देव गुरु शास्त्र तो अनंत बार मिले, देखो उपादान कहता है कि यह निमित्त इस जीव को अनंत बार मिले, किंतु उपादान जीव स्वयं नहीं बदला, इसलिए वह संसार में भटकता है। तो निमित्तों के कारण होता है समाने तो अनंत बार, वो तो आता है ना कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजाए, ग्रेवे में उपजने वाला तो सच्चा द्रव्यलिंगी होगा तो ही उपजेगा, भावलिंगी तो उपजेगी उसकी बात नहीं है, परंतु द्रव्यलिंगी होगा तो इतने ऊपर तक जा सकता है, यानी अन्य कोई मिथ्या दृष्टि नहीं, यानी वो द्रव्यलिंग धारण किया हुआ, यानी उसको तो सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा होगी ना, इसलिए आगम में लिखे हुए सत्य ऐसे आचरण करता है, अकेला आचरण। परंतु अभी चारों चौकड़ी विद्यमान है, कल शाम को हुआ था ना, तो इसलिए वो द्रव्य रेंज है, मिथ्या दृष्टि है, पहला गुणस्थान उसका छूटा नहीं है। व्रत अंगीकार किए जैसे शास्त्र में पढ़ पढ़ कर उसने अंगीकार किए, परंतु अभी अंदर से कुछ मिथ्या तो नहीं गया, अनंतानुबंधी नहीं गया, प्रत्यय करने गया प्रत्यय करने गया कुछ नहीं गया, और अपने को वो मुही मानता है तो मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसा भी वो उत्कृष्ट आचरण करके वहां तक जा सकता है, यानी अनंत बार ऐसा हुआ तो अनंत बार निमित्त मिले, सच्चे देव गुरु शास्त्र के भी मिले, अनंत बार समोचरण में जाकर सुने भगवान की वाणी, परंतु उसमें से सत्य ग्रहण नहीं किया, निमित्त पर ही निमित्ताधीन ही रहा, भगवान की वाणी सुनने पर ही वहां इसके कारण मेरा हो जाएगा ऐसा माना, तभी सच्चा समझता तो हो जाता बेड़ा पार। परंतु क्या कहते कि जीव को ऐसे निमित्त अनंत बार मिले, परंतु उपादान जो जीव स्वयं है वो बदला नहीं, अपनी दृष्टि की नहीं, तो उसका कुछ कार्य हुआ नहीं और संसार में ही भटकता रहा। अब निमित्त कहता है कह केवल कहे साधु के निकट भव्य जो होय, सोक्षायक सम्यक लहे यह निमित्त बल जोय। उसने शास्त्र पढ़ा है ना, तो निमित्त क्या कहता है, देखो जब जब जीव क्षायिक समय दृष्टि हो जाता है, पहले तो जब से सबसे पहले होता है तो वो औक्षणिक सम्यक होता है प्रथम मोक्ष, उसके बाद क्षोक्षम सम्यक होता है, और जब क्षायिक समय को प्राप्त करता है तब कहाँ होता है, तो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होता है, अन्यत्र वो अपने आप जाके क्षायिक समय दृष्टि नहीं हो सकता, तो उसका निमित्त का जोर है। तो क्या कहता है निमित्त, देखो निमित्त कहता है कि यदि केवली भगवान अथवा श्रुत केवली मुनि के पास भव्य जीव हो तो क्षायिक समय से प्रकट होता है, तो ये निमित्त का बल देखो, ऐसे वो उपादान को समझा रहे, देखो है ना निमित्त से हुआ कि नहीं हुआ। तो उपादान कहता है केवली अरु मुनि राज के पास रहे बहुलोय, पई जा को सुलटियो धनी क्षायिक ताको होय। तो क्या कहता है कि केवली और श्रुत केवली भगवान के पास बहुत से लोग रहते हैं, अभी समोचरण में कितने सारे लोग हैं, वैसे श्रुत केवली के भी सुनने वाले बहुत सारे हैं, किंतु जिसका धनी यानी आत्मा रात में कौन वाला, वातुल भाई खा रहे, डेले से कौन किया। स्कीम लग रही है ना, वहाँ अमेरिका में आने के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। देखो ये पढ़ते हम आगे। ये हुआ था देखो, केवली और सिद्ध केवली भगवान के पास बहुत से लोग रहते, परंतु जिसका धनी यानी जिसका आत्मा अनुकूल होता है, अनुकूल होता है ना, जो उपादान में कार्य कर रहा है उसी को क्षय समय तो होता है। अब निमित्त कहता है, हिंसा अधिक पापन किए जीव नरक में जाही, जो निमित्त नहीं काम को तो इम काहे कहाई। देखो हिंसा अधिक पाप करता है तो नरक में जाता है ना, निमित्त के कारण गया कि नहीं? क्यों प्रसन्न जी भाई, हम कहते हैं ना ये बुरे काम करना नहीं, पाप नहीं करना, क्यों नरक में जाना पड़ेगा? तो निमित्त कहता है देखो पाप के कारण गया कि नहीं गया। तो क्या कहते हैं कि यदि निमित्त कार्यकारी न हो तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि हिंसा अधिक पाप करने से जीव नरक में जाता है? फिर उपादान कहता है हिंसा में, हाँ हिंसा अधिक पाप करने से जीव नरक में जाता है ऐसा क्यों कहा है, ऐसा निमित्त कह रहा है। निमित्त के कारण है ना, यदि निमित्त से नहीं काम होता तो हिंसा भी पापों से जीव नरक में क्यों गया? पाप तो कुछ क्रिया है, जीव का राग भाव है, तो वहां नरक में गमन क्यों हुआ, ऐसा उसका पूछना। तो उपादान उत्तर देता है, हिंसा में उपयोग जहां रहे ब्रह्म के राज, ते ही नरक में जात है मुनि नहीं जाहे कदाच। कहते कि हिंसादिक में जिसका उपयोग है, चैतन्य परिणाम हिंसा करने में जिसका उपयोग है, दूसरे के मारने में जिसका उपयोग है, और जो आत्मा उसमें रचा पचा रहे वही नरक में जाता है। हिंसा करे उसमें रचा पचा रहे उसमें आनंद माने तो यही नरक में जाएगा, और जो अपने आत्मा में लीन हो जाएगा और भाव मुनि कदापि नरक में नहीं जाते, जो भाव मुनि यानी भावलिंगी मुनि जो है तो वो तो अपने आत्मा में रममान है, तो उनमें कोई शुभ भी करने की अभिप्राय नहीं है, शुभ हो जाते उनसे तो वे तो नरक में नहीं जाते। कौन जाता है? हिंसा यानी जिसका उपयोग चैतन्य परिणाम जिसका हिंसा में है और जो उसी में रचा पचा है वो नरक में जाता है। उपयोग हिंसा में उपयोग जहां, अब निमित्त कहता है दया दान पूजा किए, 14 नंबर, दया दान पूजा किए जीव सुखी जग होए, जो निमित्त झूठो कहो यह क्यों माने लोए। लो यानी लोग ऐसे क्यों मानेंगे? फिर देखो पहले तो उन्होंने पाप की नरक की बात की, अब कहता है जो पुण्य करता है वो सुखी होता है, तो निमित्त कहता है कि दया दान पूजा करने से जीव जगत में सुखी होता है। यदि आपके कथनानुसार निमित्त झूठा हो तो लोग उसको क्यों मानेंगे? लोग तो मानते हैं ना कि एक दूसरे को बोलते भी है, देखो जरा दया दान करो, जरा शास्त्र साध्य करो, ऐसा पुण्य मिलेगा, स्वर्ग में जाओगे। तो यदि निमित्त से नहीं होता तो ऐसा लोग क्यों कहेंगे? फिर उपादान कहते हैं दया दान पूजा भली जगत माही सुखकार, जहां अनुभव को आचरण सहय बंध विचार। उसको कहते कि दया दान पूजा इत्यादि भले ही जगत में बाह्य सहूलियत दे, बाह्य में कुछ संयोग उपलब्ध करा दे, कि जहाँ अनुभव के आचरण पर विचार करते हैं वहाँ सब शुभ भाव है, बंद है, यानी वो सुख नहीं है, ये तो बंद है, धर्म नहीं है वो। फिर निमित्त कहता है यह बात तो प्रसिद्ध है, सोच देख उर माहे, नर देही के निमित्त बिना जीव क्यों मुक्ति न जाए। तो शास्त्र पढ़ा हुआ है ना, तो ये देखो बिना मनुष्य देह के मुक्ति नहीं मिलती, कोई सीधा स्वर्ग से मोक्ष में नहीं जाता, नरक से तो जाने का सवाल नहीं है, पीरियंत भी वहां से सीधे नरक गति में से मोक्ष नहीं जाता, तो कहां से जाता है? तो मनुष्य गति में ही जीव मुनि होकर ये छठा सातवां गुण स्थान भी अन्य किसी गति में नहीं आता। चौथा गुण स्थान कौन से गति में आता है? चारों, पांचवा पीरियंत और मनुष्य, और छठा सातवां मनुष्य में होगा, और ऊपर के 14वें तक मनुष्य में हो गए, तो क्या कहता है निमित्त? देखो, मनुष्य गति के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता, तो वो क्या कहता है निमित्त? कि यह बात तो प्रसिद्ध है कि नरदेह के बिना, निमित्त बिना जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो उपादान वाले को, उपादान को कहता है कि तू इस संबंध में अपने अंतरंग में विचार कर, देख, सोच, देख, उर्माई है ना, यानी वो उपादान को समझा रहा है कि तू जरा अपने अंतर में विचार करके देख कि मनुष्य गति बिना भी मुक्ति नहीं मिलती। तो देखो निमित्त से कार्य होता है कि नहीं होता? उपादान उसको उत्तर देता है, देह पिंजरा जीव को रोके शिव पुरजात, उपादान की शक्ति सो मुक्ति होतरे भ्रात। वो कहता है कि देह रूपी तो पिंजरा है और वो जीव को शिवपुर जाने से रोक रहा है। जब तक ये मनुष्य आयु चल रही है तब तक तो मुक्त नहीं हो रहा है ना, तो वो उसको मुक्ति से रोक रहा है, किंतु उपादान की शक्ति से मोक्ष होता है। ये भी देह रूपी पिंजरा रोकता, ये भी व्यवहार कथन हुआ, ये भी निमित्त से उसको कहा, परंतु भी वो निमित्त उपादान की बात है ना, तो उसको समझा रहे कि तू ऐसा मानता है कि मनुष्य गति के कारण उसको मोक्ष मिला, तो ऐसा नहीं है, वो तो रुकावट है उसके लिए। यह भी उपचार से कथन किया उन्होंने, उपादान सब जीव पे रोकन हारो कौन, ये बहुत बड़ा है। जाते क्यों नहीं मुक्ति में बिना निमित्त के कौन? तो निमित्त कहता कि उपादान तो सब जीवों के है, तब उन्हें रोकने वाला कौन है, वे मोक्ष में क्यों नहीं चले जाते? ये जो पहले हमने प्रश्न उठाया था कि त्रिकाली उपादान तो हमेशा मिट्टी तो पड़ी है, तो घड़ा क्यों नहीं होता? तो निमित्त आएगा तो ही घड़ा होगा, वैसे ये प्रश्न ही निमित्त का। तो उपादान उसको कहता है कि उपादान सु अनादि का उलट रहो जग माहे, सुलटते ही सूधे चले सिद्ध लोक को जाहे। तो उसको कहते कि जगत में अनादि काल से जो उपादान है वो उल्टा हो रहा, उपादान की शक्ति से उलट रहा है, और सुलटे होते ही सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र प्रकट होता है और उससे वह सिद्ध लोक जाता है, यानी मोक्ष का मार्ग चालू हो जाता है। फिर निमित्त कहता है कहू अनादि बिना निमित्त ही उलट रहे उपयोग, ऐसी बात न संभव है उपादान तुम जो, कि अनादि से बिना निमित्त के ही उपयोग उल्टा हो रहा है, यानी उसको उपदेश वाला निमित्त मिला नहीं इसलिए उपादान उल्टा चल रहा है, और तुम्हारे लिए तो ऐसी बात तो संभव नहीं है। तो फिर उपादान कहता है उपादान कहे रे निमित्त हम पै कहीं न जाए, ऐसे ही जन केवली देखे त्रिभुवन राय। उपादान उसको बताता है कि मुझसे नहीं कहा जा सकता, जिनेन्द्र केवली भगवान ने यानी त्रिभुवन राय ने ऐसा ही देखा है, यानी उन्होंने क्या देखा है कि जब जब उपादान में कार्य होता है तब तक निमित्त हाजिर होता ही है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान ने देखा है। निमित्त कहता है जो देखो भगवान ने तो ही साचो आहे, हम तुम संग अनादि के बलि कहोगे काहे। तो वो कहता है निमित्त कि भगवान ने जो जो देखा है वही सच है, मेरा और तेरा अनादिकालीन संबंध है, इसलिए दो में से किसको बलवान कहा जाएगा, कम से कम यह तो कहो कि हम दोनों समान हैं। तो अभी उतर कर आए, पहले तो अपना ही अभिमान था ना निमित्त को कि मैं ही बलवान हूँ, तभी कहता अरे भगवान ने देखा है तो एटलीस्ट हम दोनों मिलकर कर दे, ऐसा तो मानो, निमित्त और उपादान दोनों मिलकर कार्य होता है, ऐसा तो इतना तो 50-50 तो रखो कि नहीं रखो। तो फिर उपादान कहता है उपादान कहे वह बलि जाको नाश न होए, जो उपजत विनशत रहे बलि कहाते सोए। तो कहता है जिसका नाश नहीं होता वह बलवान है, जो उत्पन्न होता है और जिसका विनाश होता है वह बलवान कैसे होता है? तो उपादान तो अखंड वस्तु है ना पूरी, तो उसका नाश नहीं है, और निमित्त क्या है, उस विशिष्ट समय में वो संयोग रूप वस्तु है, तो उस संयोग का विनाश होता है, उस निमित्त वाली वस्तु का विनाश नहीं है, निमित्त रूप से वो संयोग उसका निमित्त हुआ ना, गुरु की वाणी, उसका उपदेश, उनका वहां रहना, वो उसको संयोग था, तो उतना संयोग निमित्त में लिया, वो संयोग का नाश हो जाता, इसलिए जिसका नाश होता है वो बलवान नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं।
फिर निमित्त कहता है उपादान तुम जो रहो तो क्यों लेता आहार, पर निमित्त के योग सो जीव सकल संसार। तो निमित्त कहता है कि अरे उपादान, यदि तेरा ही बल हो तो तू आहार क्यों लेता है। संसार के सभी जीव पर निमित्त के योग से ही जीते हैं, यानी सभी जीव आहार लेते हैं इसलिए जी रहे हैं। उपादान कहते हैं जो आहार के योग सो जीवित है जग माही, तो बासी संसार के मरते को नाही। यदि आहार से ही अगर जगत जीवता हो तो संसारवासी कोई भी नहीं मरता, क्योंकि सभी जीव आहार ले रहे। सूर सोममणि और निमित्त कहता है सूर सोममणि अग्नि के निमित्त लखे ये नयन, अंधकार में कित गयो उपादान दुर्गदयन। तो निमित्त कहता है कि प्रकाश हो तो ही आंख देख सकती है, तो प्रकाश किस किस का, तो सूर्य का, चंद्रमा का, मणि यानी रत्न का और अग्नि का। तो हम अलग अलग ना, कोई टॉर्च से देखे, कोई ट्यूबलाइट लगा के देखे, कोई अन्य अन्य दीपक लगा के, तो उसको कहते ये उपादान देखने का काम कर सकता हो तो अंधकार में भी उसको देखना देखने से। सोम यानी चंद्र, सोमवार है ना रविवार यानी सूर्य का वार, और सोमवार यानी चंद्र का, तो सूर्य यानी सूर्य, सोम यानी चंद्र, मणि यानी रत्न, अग्नि तो ये मालूम है ना, कोई भी दीपक हो या और कोई भी अग्नि बिजली जो है वो भी अग्नि है। यदि उपादान देखने का काम कर सकता हो तो अंधकार में उसको देखने की शक्ति कहाँ चली जाती है, यानी अंधकार में भी उसको देखना चाहिए। फिर उपादान कहते हैं सूर्य सोम मणि अग्नि जो करे अनेक प्रकाश, नयन शक्ति बिना ना लखे अंधकार समभास। ये सूर्य चंद्रमा मणि दीपक वगैरह सब प्रकाश करते हैं, परंतु जिसे देखने की शक्ति नहीं होगी, कोई अंधा होगा तो उसको तो सारा अंधकार से ही भाषित होगा। प्रकाश होते हुए भी बिना आंखों की शक्ति से कोई देख ही नहीं सकता है, इसे उपादान से कार्य होता है। फिर निमित्त कहता है कहे निमित्त वे जीव को मोह बिना जगेंगे माही, सबे हमारे वश परे हम बिना मुक्ति न जाहे। वो कहता है निमित्त कि मेरे बिना जगत में मात्र जीव क्या कर सकता है, सभी मेरे वश में है, निमित्त के वश में सारे है, मेरे बिना जीव मोक्ष भी नहीं जा सकता। फिर उपादान कहता है उपादान कह रहे निमित्त ऐसे बोल न बोल, तो को तज निज भजत है ते ही करे किलोल। किलोल करते हैं वो अंदर आनंद उपभोगते हैं, केली करते हैं। क्या कहता है कि ऐसी बात मत कर, क्यों कि तेरी ऊपर की दृष्टि यानी निमित्त की दृष्टि छोड़कर जो जीव अपने को भजता है यानी अपना ध्यान करता है, स्वयं में लीन होता है, वही आनंद करता है यानी उसी को सच्चा सुख मिलता है, आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। कहे निमित्त हमको तजय कैसे शिव जात, पंच महाव्रत प्रकट है अवरहु क्रिया विख्यात। तो निमित्त कहता है कि मुझे छोड़कर कोई मोक्ष में नहीं जा सकता, नहीं कैसे जा सकता है, क्योंकि पंच महाव्रत तो प्रकट है ही, दूसरी क्रियाएं भी प्रसिद्ध है जिन्हें लोग मोक्ष का कारण मानते हैं। यानी वो कहते कोई बिना मुनि हुए बिना कोई मोक्ष नहीं जाता, तो देखो ये पंच महाव्रत किए ना इसलिए मोक्ष गया। फिर उपादान कहते हैं पंच महाव्रत जोगत रह और सकल व्यवहार, पर कौन निमित्त खपाए के तब पहुंचे भव पार। ये जो पांच महाव्रत है, फिर तीन योग है और उसका जो लक्ष्य उसकी योग पंच महाव्रत की ओर का जो लक्ष्य है, ये तीन गुप्ति और सारा जो है ना तीन योग उसके ओर का जो लक्ष्य है यानी मनोयोग वचन योग का योग, इनका जो लक्ष्य है और जो समस्त व्यवहार है और निमित्त है, इन सबका लक्ष्य छोड़कर जब जीव अंतरंग में लीन होगा तभी वो बहुत से पार होगा। कहे निमित्त जब मैं बड़े हो मोते बड़ो न कोई, तीन लोक के नाथ सब मोह प्रसाद से हो। तो निमित्त कहता है कि जगत में मैं बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और तीन लोक का नाथ भी मेरी कृपा से होता है। फिर उपादान कहता है कि उपादान कहे तू बड़ा सहुगति में ले जाए तो प्रसाद ते जीव सब दुखी हो ही रे भाई। तो कहता है कि हे निमित्त तू कौन, तू तो जीव को चारों गतियों में बटकाता है, चारों गतियों में ले जाता है, भाई तेरी कृपा से सभी जीव दुखी ही होते हैं। यानी जो निमित्ताधीन दृष्टि वाला है वो चार गतियों में भटकता है। सहे निमित्त जो दुख सहे तो तुम हम ही लगाए, सुखी कौनते होता है ताको देहु बताए। तो निमित्त कहता है जीव तो दुख सहन करता है, उसका दोष तो हमारे ऊपर लगाता है, किंतु यह भी बताओ कि जीव सुखी किससे होता है। तो उपादान कहता है जो सुख को तू सुख कहे तो सुख ना ही, ये सुख दुख के मूल है सुख अविनाशी माही। कि तू जिसे जिस सुख को सुख कहता है वह तो सुख ही नहीं है, वह सुख तो दुख का मूल है। अकेला दुख है नहीं, दुख है दुख का मूल है, आत्मा के अंतरंग में अविनाशी सुख है। अविनाशी घट घट बसे सुख क्यों विलसत नाही, शुभ निमित्त के योग बिना परे परे विललाही। उसको कहते कि अविनाशी सुख तो घट घट में है, यानी प्रत्येक जीव के अंतर में है, तो जीवों में वो सुख का विलास सुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। जो शुभ निमित्त के योग बिना जीव तो दुखी ही होता है, और जिसको शुभ का योग होगा वो सुखी होगा। फिर उपादान कहता है शुभ निमित्त यह जीव को मिल्यो कही बवसार, पैक सम्यक दर्श बिन भटकत फिरो गवार। कि शुभ निमित्त तो इस जीव को अनेक बार मिला, परंतु सम्यक दर्शन के बिना यह मूर्ख जीव यानी अज्ञानी जीव भटक रहा है। फिर निमित्त कहता है सम्यक दर्श बहे कहा त्वरित मुक्ति में जाहे, आगे ध्यान निमित्त है ते शिव को पहुंचाए। तो कहते कि सम्यक दर्शन होने से क्या हुआ, आगे ध्यान के निमित्त बिना जीव मोक्ष में नहीं जाना, अभी वो निमित्त अपने पर छाना हुआ। उपादान कहते छोर ध्यान की धारणा मोर योग की रीत, तोरी कर्म के जाल को जोरी लई शिव प्रीत। तो कहते कि ध्यान की धारणा को छोड़कर योग की रीति को समेट कर, मनोवचन योग का योग वगैरह सारे को समेट कर अपने अंतर में ले जाकर, कर्म जाल को तोड़कर जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा शिवानंद की प्राप्ति करता है, यानी मोक्ष में पहुंच जाता है। निमित्त कहता है तब निमित्त हार्यो तहां अब नहीं जोई बसाए, उपादान शिव लोक में पहुंचो कर्म खपाए। तब निमित्त हार गया, अब कुछ जोर नहीं करता, और उपादान कर्म का क्षय करके शिवलोक में पहुंच गया। उपादान जीत्यो तहां निज बल कर प्रकाश, सुख अनंत ध्रुव भोगवे अंत न वर्ण्योता। यानी जिस प्रकार निज बल का प्रकाश कर उपादान जीत गया, उस अनंत ध्रुव सुख को भोगता है जिसका अंत नहीं है। अभी तत्व का स्वरूप बताते उपादान और निमित्त ये सब जीवन पर वीर, जो निज शक्ति संभाल ही तो पहुंचे भवती। कि उपादान निमित्त सभी जीवों के है, प्रत्येक के पास उपादान और निमित्त है, किंतु जो वीर अपनी उपादान शक्ति की संभाल करते हैं वे भव के पार को प्राप्त होते हैं, और जो निमित्त के अधीन रहते हैं निमित्त की ओर ताकते रहते हैं उनका कुछ नहीं होता। भैया महिमा ब्रह्म ऐसे वर्णी जाए, वचन अगोचर वस्तु है कहीं वो वचन बताए। कि आत्मा की जो ब्रह्म है आत्मा, आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन कैसे कहा जाए, क्योंकि वो वचन के पार है, वचन के अगोचर है। उपादान और निमित्त को सरस बन्यो संवाद, समदृष्टि को सरल है मूर्ख को बकवाद। अभी हमारे में से किसको बकवाद लगाइए, तो उसको कोई नहीं कहेगा मुझको लगा। देखो क्या कहते हैं, उपादान और निमित्त का यह सुंदर संवाद बना है, यह समय दृष्टि के लिए सरल है और मिथ्या दृष्टि के लिए बकवाद मालूम होगी। जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद, यानी जो आत्मा के गुणों को पहचान रहा है ना वही इसके स्वरूप को जानेगा। साख जिनागम सो मिले तो मत की जो खेद, यानी आत्मा के गुणों को जो जानता है वो इसका मर्म भी जानेगा, और इसके स्वरूप की साक्षी जिनागम से मिलती है। साख यानी साक्षी, यानी इसका जो कथन किया है वो जिनागम से मिलता हुआ है, ठीक था ये स्वरूप की जो जिनागम से ये कथन जो है वो जिनागम से मिलता है। इसलिए इसमें शंका नहीं करना इसे कहते। भगवती दास कहते ये मेरी बात नहीं अपनी, ये जिनागम के द्वारा ये मैं सीखा हूँ, ये आपको बता रहा है, तो ये सारा जिनागम से मिलता है इसलिए इसमें शंका नहीं करना। नगर आगरा आग्रह जैनी जन को वास यह थान कर रचना करी भैया सोमति प्रकाश के। आगरा में जैनियों का वास है यानी वो निवास करते हैं और भगवती दास ने अपने ज्ञान के अनुसार यह रचना की है अथवा अपने ज्ञान के प्रकाश के लिए यह रचना की है, दोनों प्रकार से इसको ले सकते हैं। संवत विक्रम भूप को 1750 फाल्गुन पहले पक्ष में दशो दिशा प्रकाश। तो विक्रम संवत 1750 में फाल्गुन मास के प्रथम पक्ष में इस संवाद की रचना की गई है। इस तरह के उपादान और निमित्त की चर्चा हमारी समाप्त हो जाती है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोगा लो, तो वाणी मस्तक न हो सदा देत।